मोहम्मद अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पिशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज, सबको मैं कहता हूं सुबह खैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है जुमातुल मुबारक, 17 जमादिल सानी 1443 हिजरी, जनवरी की 21 तारीख सन 2022। और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ, नाम है मेरा दिल द सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक। बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे और सुबह का आगाज भी अच्छा हुआ होगा। इट्स अ नाइस वार्म बामी स्लाइटली विंडी अ बिट क्लाउडी मॉर्निंग हियर इन कराची। कितना खूबसूरत नक्शा खींचा ना मैंने कराची ये सुबह का। और एज एक्सपेक्टेड यस इट इज अ बिट ड्यूई एज वेल। कराची में इस वक्त टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एवरीथिंग इज वेरी हाई, बट आज सुबह में किसी टाइम से कराची में तेज हवाओं के झक्कर चलने वाले हैं। और फिर उसके बाद जो है वो एक बार पूछ रहा हूँ, दीज आर गोइंग टू बी द वेस्टर्नली, सो यानी मगरबी तरफ से आने वाली जो हवाएं हैं, और उम्मीद यही है कि उसके बाद से इस वीकेंड में कराची में एक बार फिर से सर्दी की लहर शुरू हो सकती है। बाकी सारे शहरों का तो मुझे पता है जी, बेहतरीन सर्दी इंजॉय कर रहे हैं, बेहतरीन मौसम है, बारिशें भी हो रही हैं, सुना है कल माशाल्लाह लाहौर में भी जो है वो शायद बारिश मेरे ख्याल से होती रही, कुछ मैसेजेस मैं कल देख रहा था, परसों देख रहा था, बट बहरहाल जो भी है सूरत, वेलकम टू द शो गाइस। एंड इफ यू विश टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम, यू कैन ट्वीट मी विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। सो हियर वी आर गाइस, एंड या जैसे मैं अभी अपने ट्विटर पर लॉग इन किया हूँ, आई सॉ दैट ट्वीट फ्रॉम एनसीओसी। और आपको पता है कि आजकल एनसीओसी की जानिब से आने वाला जो ट्वीट है, इट इज़ नॉट ये कोई इतनी अच्छी पिक्चर तो प्रेजेंट बहरहाल नहीं कर रहा है, लेकिन एज आई सेड वी हैव टू लिव विद दैट। जो एक अच्छी चीज़ अच्छा नहीं कल याद यस्टरडे एक्चुअली वॉजेंट अ गुड डे, बिकॉज एक तो पॉजिटिविटी रेशो पाकिस्तान में 13% पे पहुंच गया है, पॉजिटिव केसेस 7,678, पर जो परेशान कुन नंबर है दैट्स द नंबर ऑफ डेथ्स विच इज़ एट 23. सो एक इसमें स्पाइक देखने में आया इन द नंबर ऑफ डेथ्स। देर कुड बी अ रीजन ऑफ नॉट रिपोर्टिंग इन द प्रीवियस डेज, बिकॉज पिछले दो दिनों में 5 और 8 डेथ्स की जो है वो बात की गई थी। सो अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। वेल एज वी हैव बीन सेइंग, मुझे पता है कि इतना कोई फर्क पड़ता नहीं है लोगों के ये बात कहने से, बट मास्क अप, मास्क हैज़न्ट रियली बीन अ पार्ट ऑफ और जो एक ज़माने में हमारे अटायर का हिस्सा बन गया था, इट्स नो मोर देयर, वन। एंड देन सेकेंडली या गेट बूस्टर्ड, गेट द जैब, इट इज़ वर्किंग, वैक्सीन्स आर वर्किंग, मेरा ख्याल से इसमें अब तक किसी को कोई शक नहीं रहना चाहिए, बट बहरहाल अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, आमीन सुमा आमीन। Alright, Imran Qureshi साहब का ट्वीट ऊपर नजर आ रहा है मुझे, क्या बात है, नॉट द फर्स्ट ट्वीट ऑफ द डे, इन फैक्ट इट वॉज द लास्ट ट्वीट जो अभी अभी मेरे पास पहुंचा है, बट अभी भी क्योंकि मैं अपनी सनराइज विद अदील की टाइम लाइन पे आया हूँ, सो आई सो अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू हुसैन आला, आपका भी बहुत शुक्रिया। आई एम स्क्रोलिंग डाउन राइट नाउ एंड आई सी आज का पहला मैसेज हमारे पास जो है वो कल रात से ही आया हुआ, इनफैक्ट फैजान परवेज साहब दो दरिया गए हुए थे, वहां पर उन्होंने टाइम को एंजॉय किया जबरदस्त, इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल इंडीड एंड इट्स अ वेरी नाइस टाइम ऑफ द ईयर टू विजिट दैट प्लेस। डॉक्टर तनवीर फामे की जुमा मुबारक, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, आपने दुआएं भेजी और कुछ नसीहतें भी भेजी हैं। इसके अलावा वी हैव गॉट वकार अहमद साहब, आपने टोली पीर रावला कोट आजाद जम्मू एंड कश्मीर की तस्वीरें भेजी हैं, जबरदस्त। फराज कहते हैं कतर से सलाम, सैड इंसिडेंट इन लाहौर, highly condemn, request to all listeners to avoid sharing videos and pic of such incidents and only share info regarding blood donation. Waqai seriously, main bada hairan main, aur ye aksar faraz main ye baat bolta hu ke yaar kitne sang dil kism ke aur sakht dil patthar dil kism ke log hote hain jo ek to number 1 unme ye himmat hoti hai is tarah ki videos dekhne ki aur dusri wo ye videos share kar rahe hote hain dusron ke sath. Dekhiye aapka taluq सहाफत से है या मेडिकल प्रोफेशन से एंड ऑल, आई मीन आपकी अगर ये नौकरी की जरूरत है तो ये तो बात अपनी जगह है, लेकिन जनरली इसको शेयर कर देना अजीब सी बात होती है। बहरहाल जी, बहुत अफसोसनाक वाकया कल लाहौर में हुआ, और लाहौर के ओल्ड सिटी में, राइट इन द हार्ट ऑफ लाहौर, ये मोटरसाइकिल बम धमाका हुआ है, और जिसकी ज़ाहिर है इस वक्त वो आग भी ठंडी हो चुकी होगी, और इस वक्त मामलात वहाँ पे कूल डाउन हो गए होंगे, क्राइम सीन सील हो गया होगा, लेकिन इस धमाके की जो बाजगश्त है उसकी गूंज जो है वो हमें बहुत देर तक सुनाई दी जाएगी, बिकॉज पाकिस्तान रिमेंबर वाज अबाउट टू होस्ट टू मेजर स्पोर्टिंग इवेंट, लाहौर वाज ऑफ कोर्स वन ऑफ द मेजर होस्ट सिटीज देयर, हम बात कर रहे हैं PSL के, और उसके फौरन बाद एक बहुत ही हाई प्रोफाइल दौरा ऑस्ट्रेलिया की टीम का, एक तवील अरसे के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम 24 साल के बाद पाकिस्तान आ रही है, और उससे चंद दिन पहले जो है ये वाकया हुआ है। This is very sad. और सबसे अफसोसनाक बात कि जाँ बहाक होने वालों में दो बेचारे बच्चे शामिल हैं। So एक दहशतगर्द तंजीम ने ज़ाहिर है इसकी जिम्मेदारी कबूल कर ली है. सो लेकिन बहरहाल एज़ आई सेड इस धमाके की गूंज इतने आराम से जो है ना वो ख़त्म होगी नहीं, और यही शायद इसका मकसद भी था. फरी थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग. इस्लामाबाद से मैसेज किया है, क्लाउडी एंड रेनी, दैट इज़ ग्रेट. डीजे सुमेर कहते हैं गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. और रियाज़ुर रहमान साहब कहते हैं अच्छा आपने बीबीसी उर्दू का एक आर्टिकल शेयर किया है जिसमें लिखा है अमरीकी मंडी तक रसाई की दौड़ में पाकिस्तान इंडिया और बांग्लादेश से आगे कैसे निकला. वैसे बड़ी कमाल की बात है रियाज साहब, बीबीसी उर्दू से पाकिस्तान के लिए कोई पॉजिटिव खबर सुनने में आ रही है. बिकॉज पिछले कोई 20 साल से, क्योंकि मैं बीबीसी उर्दू का बड़ा ही रेगुलर सामे हूँ, और आई एम सॉरी हो सकता है मेरी बात बाज़ लोगों को गलत लगे, लेकिन मैं जब बीबीसी उर्दू सुनता था, अच्छा मैं जब बीबीसी हिंदी सुनता था तो मुझे लगता था कि मैं ऑल इंडिया रेडियो सुन रहा हूँ, और जब मैं बीबीसी उर्दू सुनता था तो मुझे लगता था मैं फिर भी ऑल इंडिया रेडियो सुन रहा हूँ. लेकिन जबान चेंज हो गई है, यानी उनका पाकिस्तान के खिलाफ एक पता नहीं आई डोंट नो फॉर सम ऑड रीजन एक बायस रहा है. और ये बीबीसी के फिर जब जर्नलिस्ट निकल के टेलीविजन पे भी आते हैं वो एक सर्टन लाइन टो करते हैं. अमी शफीना की जामई साहब को आप देख लें, अंबर शमसी को आप देख लें, एंड ऑल. अब बहरहाल चले मैं इस डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन बहरहाल अमीन अच्छा आर्टिकल आया है बीबीसी उर्दू में, इसको हम रीट्वीट कर देते हैं. पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से आज जरा तफसील से बात होनी है, बिकॉज कल बहुत ही दिलचस्प नंबर जो है वो सामने आए हैं. और वो नंबर जो सामने आए हैं उसमें आपने ये देखा कि पाकिस्तान ने बिलाखिर यानी असद उमर साहब से इतनी रिक्वेस्ट हमने की, मैं क्या कहूँगा, खैर जो एक्सपर्ट्स हैं वो काफ़ी अरसे से कह रहे थे कि खुदा के लिए अल्लाह के बंदे पाकिस्तान की इकोनॉमी को रीबेस करो, बेस ईयर को चेंज करो. जिस बेस ईयर पे आपकी इस वक्त इकोनॉमिक फाइनेंशियल कैलकुलेशंस हो रही हैं वो पाकिस्तान की इकोनॉमी की सही शक्ल को इस वक्त जस्टिफाई नहीं करता. सो बहरहाल जी उन्होंने हमारी बात अब सुन ली है और उन्होंने जो है ना वो बेस ईयर को जो है वो रीगेज कर दिया है, जिससे आपके नंबर्स जो हैं वो काफ़ी चेंज हुए हैं. एंड सम ऑफ दीज नंबर्स हैव एक्चुअली स्टार्टेड टू लुक वेरी ब्यूटीफुल, एंड सम ऑफ दीज नंबर्स आर एक्चुअली लुकिंग सो गुड दैट खुदा के लिए हम कोशिश करेंगे कि यार जरा अपने कुछ कॉम्प्लेक्सेस से हम बाहर निकलने की भी कोशिश करेंगे. ठीक है जी, वो आगे चल के प्रोग्राम में हम बात करते हैं. आज 7:30 पे एक ब्रेक है, ये मैंने खुद अभी ये नोट किया, 7:30 पे ये ब्रेक है, तो ये ब्रेक सुनते हैं और फिर उसके बाद जो है वापस आके प्रोग्राम कंटिन्यू करते हैं. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. लाइफ इज ऑल बबल ऑफ वाटर, दैट वाज योर वीकली डोज ऑफ पानी का बुलबुला. अबरार थैंक यू सो मच, एंड लेट्स डेडिकेट दिस सॉन्ग टू अ यंग मैन नेम मुस्तफा अहमद. ऑलराइट, मुस्तफा आज अपनी सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं और मुझे नहीं पता उनके बाबा इमरान जो हैं वो ये लिखना भूल गए कि मुस्तफा कितने साल के हुए हैं, बट फ्रॉम द पिक्चर आई कैन गेस दैट मुस्तफा मस्ट बी अराउंड 6 years old, 5 to 6 years old, इज दैट राइट इमरान. बहरहाल चलें जी, जितने भी साल के हों बहुत सारी मुबारकबाद, और वीकेंड पे बर्थडे का तो अलग ही मजा होता है ना, तो हैव अ गुड डे माय बॉय, एंजॉय. ऑलराइट, शाहीन ताहिर ने भी इंजॉय किया पानी के बुलबुला. वालेकुम अस्सलाम पीर जहीर साहब, कैसे इंजॉय नहीं करेंगे, तो जबरदस्त ये तो काम हो गया. इसके अलावा हेलो अदील अंकल, वी आर गोइंग टू स्कूल. बात कुश्ती वाला तो स्कूल नहीं जा सकते फॉर श्योर, बच्चे उनके जा रहे हैं, बच्चों का नाम उन्होंने लिखा नहीं, लेकिन फिर भी ग्रेट जी. इसके अलावा नवीद मुनवर साहब प्रोग्राम सुन रहे हैं विद आहयान बरीरा एंड अबीरा. जुमा मुबारक गाइज. एंड देन वी हैव गॉट अरे यार, अच्छा जी, देन ओके, इट्स वेरी कूल पानी के बुलबुला. तहसीन अमजद ने भी इस गाने को एंजॉय किया. ठीक है चलें जी, मैसेजेस आप लोगों के अभी हम बाकी भी और थोड़ी देर में शामिल कर लेते हैं. अच्छा, ओहो भाई, रहमान खिलजी साहब, इनके बच्चे भाई अब्दुल मुक्तदर और फातिमा, इफ यू गाइज आर लिस्टिंग आई एम सो सॉरी यार, आई डोंट नो व्हाई आई हैव बीन मिसिंग आउट ऑन योर नेम एंड ऑल. आज तो आपने लिखा भी नहीं लेकिन मैं मेंशन कर रहा हूँ आप लोगों को. ठीक हो गया जी. एंड बहरहाल सर, आज थोड़ा सा आपका जो ये क्रिप्टिक मैसेज है खिलजी साहब, ये आखिर में समझ में नहीं आया, यानी प्रेजेंस मैंने लगा दी है, ठीक हो गया सर, और ये 1-2 क्या है ये मैं समझ में नहीं आया. अली अजहर गिलानी साहब गुड मॉर्निंग, एंड साकिब कहते हैं जी द ग्रुप एंड द फिक्स्चर्स ऑफ 2022 मेंस वर्ल्ड कप हैव बीन रिवील्ड. यस, 2022 वर्ल्ड कप, अभी तो T20 वर्ल्ड कप खत्म हुआ था और अभी जो है वो दोबारा से T20 वर्ल्ड कप का जिक्र शुरू हो गया. खैर एनीवे, वी ऑल न्यू अबाउट दैट ना, कोई सरप्राइज आपके लिए कोई ब्रेकिंग न्यूज तो थी नहीं, बिकॉज हम काफी अर्से से बता रहे थे कि ये वो वर्ल्ड कप है जो कि ऑस्ट्रेलिया में होना था, ऑस्ट्रेलिया में होना था, लेकिन कोविड की वजह से जो है ये वर्ल्ड कप नहीं हो पाया था. और इसमें सीन जो है वो ये हुआ है दैट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान आ गया भाई मैच, इंडिया पाकिस्तान का एक बार फिर से, एंड बोथ टीम्स विल बी टेकिंग ऑन ईच अदर ऑन द 23rd ऑफ अक्टूबर. अब इंडिया को हमने कब आया था? 24 को आया था, 25 अक्टूबर को आया था, किस किस तारीख को आया था, कुछ कुछ ऐसी कोई डेट थी, आई डोंट नो मैं क्यों वो भूल गया, लेकिन ऐसा जो है ना वो बारह होना नहीं चाहिए था। जी ऑस्ट्रेलिया डिफेंडिंग चैंपियन जो है दे विल बी किकिंग ऑफ देयर कैंपेन अगेंस्ट न्यूजीलैंड। तफसील से हम नजर डालेंगे जरा ग्रुप्स के हवाले से भी कि ग्रुप का क्या सीन है और क्या सिलसिला है बाद में, लेकिन अभी जो है बहरहाल चलें जी, लेट द क्रेशेंडो बिल्ड अप। ऑलराइट यूसुफ नवाब साहब, गुड मॉर्निंग आपको हम कहते हैं, शामिर अजान कहते हैं, टुडे इज द फिफ्थ बायनुअल ऑफ इस्लामियात, जबरदस्त। अच्छा जी, बबल ऑफ वाटर आप लोगों ने सुन लिया होगा माशाल्लाह, रोजाना अपने एग्जाम्स का बताते हैं, एग्जाम्स कैसे बता रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, ये तो आप मुझे बता नहीं रहे, लेकिन अल्लाह करे अच्छे ही जा रहे होंगे। And then we have got Abdul Rauf Saab from Hassan Ahmed Varda to Adil Uncle Adil listener family. That's great. Good morning, guys. And then we have got Zaved Saab. Thank you. Formerly known as Najam Saab. Usama Saeed Saab batate hain Lahore mein it's 9 degrees Celsius. So Lahore mein thodi sardi mein bhi kami hui hai. Kya khayal hai? Okay, ji. Alishwa Musa Haider Alena says, good morning. I hope the kids enjoyed Pani Da Bulbula. Iske alawa Fahim Ali Khan Saab kehte hain, bro, I have heard government is vaccinating student of age 12 in schools. It's not a good idea. The side effects of vaccine are still need to be recorded in my opinion. Nahi yaar fahim ab ye rehne do. Side effects of the vaccine. Like, you know, pata hai duniya mein kitni vaccines administer ho chuki hain? Do you have any idea? Duniya mein kitni, bas ab theek hai, is discussion ko hum side pe kar dete hain mere khayal se waqti taur se. Children above the age 12 to 18, it's all safe. So let, I mean, agar aapke children abhi tak vaccinated nahi hain, let them go for it. I mean, I know so many children jo abhi COVID ka shikar hue hain, Omicron variant ka, even though the symptoms last for just 2-2.5 days, lekin phir bhi, why expose our kids? Okay, FK Niyazi sahab kehte hain, good morning, kal ek match chal raha tha, 2020 khel raha tha, Mohammad Yusuf Murli Tharan, haan ye Legends League chal rahi hai, Shariq Kidwai sahab ne mujhe aaj jo hai na, wo is hawale se bataya ki ye ek tournament chal raha tha, honestly mujhe nahi pata, uska suna hai kal Pakistani aur Sri Lankan jo combined team thi, uski bahut kut lagi hai. और वो जो है कहते हैं जी, वो कैफ ने और इरफान पठान वगैरह ने काफी, और मिसबा ने अपने वही पुराने स्टाइल से क्रिकेट खेल रहे थे, तो मिसबा इज अ लेजेंड यार, नो डाउट अबाउट दैट। ऑलराइट, रेहान अलवी साहब ने कंफर्म कर दिया, 24 अक्टूबर को हमने हराया था इंडिया को, यार कैसे भूल सकता हूं मैं, 24 याद था मुझे, मैंने पहली डेट 24 ही बोली थी, तो अब हम 23 अक्टूबर को इंडिया को फेस कर रहे होंगे, एंड वी विल बी फेसिंग देम एट द जी, लाइक एट द MCG, सोचें 1,00,000 की क्राउड, और अल्लाह करे कोई कोविड का नया वेरिएंट ना आ गया, एप्सिलॉन वेरिएंट या कोई जीटा वेरिएंट, अल्लाह ना करे, सो अगर हो तो आई मीन ऑफ कोर्स आई एम श्योर इंडियन पाकिस्तानी आर गोइंग टू फिल अप 70,000 सीट्स देयर, 60,000 फॉर श्योर। ओके, अल्लाह ताला हम सबको भी जो है वो सादत नसीम फरमाए इस तरह के मैचेस देखने की, आमीन। और के जी, सैयद अली अदर गिलानी साहब ने एक खबर शेयर किया जो कि चाइना से आई है, China vows to curb the influence of tech companies on government as part of communist party's plan to break the ties between money and power in the range of industry. Acha Ali Adar Gilani sahab, ye maine program mein kafi pehle discuss kiya tha, I think maine kafi tawatur ke sath discuss kiya, jab China ne pehle to unhone Jack Ma ko neutralize kiya tha, Jack Ma ko bilkul out kar diya na scene se, uske baad wo jo badi companies Tencent hai uske khilaf gaye the, और वहाँ की चाइना की एक दो और बड़ी कंपनियां जिसके खिलाफ चाइनीज गवर्नमेंट ने जो है ना वो जरा एक्शन करना शुरू किया था कि बेटा चलो जरा इन जमीन पे आ जाओ, बिकॉज दे डू नॉट वांट दीज कंपनीज टू बिकम फेसबुक मेटा, और फेसबुक का नाम तो चेंज हो गया, मेटा हो गया है, दे कांट लेट दीज कंपनीज टू बिकम गूगल और कंपनीज लाइक मे बी टेस्ला एंड स्टफ, यानी वो लोग जहाँ पे चीज़ों को मैनिपुलेट करना शुरू कर दें, और काफ़ी सारी जो है ना ये गेम इस चीज़ के हवाले से जो है ना वो चल रही है चाइना में, तो काफ़ी उन्होंने टाइट कर दिया है मामलात को यार। सो ये तो थोड़ी सी पुरानी खबर है, बट ये एक आई थिंक इन्होंने जो है वो चाइना बार बार ये बताता रहता है कि हम ये डायनासोर्स बनने नहीं देंगे, हम इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं बनने देंगे, वो चाइनीज का अपना स्टाइल है चलाने का। बोलूँ तहसीन अमजद कहते हैं, ब्लेस डे मुबारक टू ऑल, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड इन द करंट रेडियो फ्रेटर्निटी? माई बेस्ट फ्रेंड इन द करंट रेडियो फ्रेटर्निटी, माई फ्रेंड दानिश सईद, ऑफ कोर्स यार, आई मीन मुलाकात अब बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी दानिश इज माई वेरी गुड फ्रेंड एंड माई, बल्कि हमारा जो फर्स्ट रेडियो ट्रॉयका था बेस्ट फ्रेंड्स का, मी दानिश एंड सूकी, वो तो बड़ा मेरा गोल्डन टाइम था रेडियो का, एंड आई रियली मिस देम, और कभी ना कभी जिंदगी में मौका मिला तो जरूर साथ शो करेंगे। खुर्रम कहते हैं, अदील भाई प्लीज से हेलो टू अरहम एन ईमान, अरहम एन ईमान गुड मॉर्निंग। अच्छा जी, इसके अलावा वलीद मुगल बताते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन टू पाकिस्तान, वी हैव क्वालिफाइड फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ द अंडर 19 वर्ल्ड कप। जी हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन, कल पाकिस्तान ने जो है वो एक नजदीकी मुकाबला हुआ, अफगानियों ने कल टफ टाइम दिया पाकिस्तान को, तो वेल डन पाकिस्तान, बहरहाल मैच जीतने में कामयाब हो गया। And then we have got Hasnain. Thank you so much. Good morning. And then Zeeshan kehte hain, I'm a very old listener of your show. Getting kids to school. Musa and Ismail. Stay blessed. Thank you. Wow. Sahufi Ibrahim wa Musa. Acha, Ismail hain. Acha, Ibrahim wa Musa. Wow. Zabardast. Kya baat hai. Mashallah. Then we have got Juma Mubarak Adil bhai. AA Fish. Fresh Fish se message aaya. Yaar, aap log Fresh Fish wagara koi game bhi karte hain ya sirf आपने नाम रख दिया? ऐसे ही तो नाम नहीं रखा होगा ना ए ए फ्रेश फिश ने, बिकॉज आप सिर्फ एक बंदे को फॉलो कर रहे हैं और वो मैं हूँ. ओके, सो क्या कहानी है फ्रेश फिश की मुझे बताएं ना. लाइक इफ आई वांट टू ऑर्डर फ्रेश फिश फ्रॉम यू गाइस, व्हाट डू आई हैव टू डू, बताइए मुझे. ठीक है, वैसे लगता भी आप कराची के लगते हैं मुझे भाई. ओके, जिसके अलावा टी एम अवान कहते हैं, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन प्रीवियस टेन्योर एंड करंट बेस ईयर चेंज. अच्छा, ये जो बेस ईयर चेंज है ना, इस पे यार देखें, नहीं यार, अवान भाई वो खुदा का खौफ करें यार. आई मीन ये बस कह देना कि ये बेस ईयर अपने नंबर्स को अच्छा दिखाने के लिए किया जा रहा है, यार ऐसा नहीं है. इसमें मैं जरा तफसील से बात करूंगा. ठीक है, देखो अब इसमें अवान भाई पॉइंट क्या है. पॉइंट ये है कि एक तो ये है कि यार मैं ना मानूं, मुझे तो माननी नहीं है बात. ये तो कुछ भी कह दे, अदील अजहर बेहतरीन से बेहतरीन तावील बांध के दे दे और बेहतरीन से बेहतरीन यहाँ पे बात कर दे, लेकिन मुझे तो नहीं मानना बिकॉज मेरा बोग्स है, आपको पता है बोग्स है हुकूमत के साथ. सिमिलरली इट कैन हैपन विद एनीवन. सो बेस ईयर रेक्टिफिकेशन हर मुल्क करता है दुनिया का, और उसकी मैं आपको लॉजिकल रीजन भी बताऊंगा कि इसकी क्यों जरूरत होती है. इस हुकूमत से भी पिछले कई साल से यह दरख्वास्त की जा रही थी कि अल्लाह के बंदों जस्ट डू इट, कर लो ये, बट बहर अल्लाह दे हैव डन इट. सो प्लीज ये कह देना कि बेस ईयर चेंज किया गया है जस्ट टू मेक द नंबर्स लुक गुड. अभी मैं आगे भी आपको बताऊंगा, जब बांग्लादेश अपना बेस ईयर चेंज करके अपनी जीडीपी को बढ़ा देता है तो फिर आप कहते हैं, ओ यार लुक एट बांग्लादेश को देख, चेक कर मैन, बांग्लादेश कहां निकल गया भाई. उन्होंने अपनी रीबेस किया है अपनी जीडीपी को, बढ़ गई उनकी जीडीपी ये, और देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट. ऑलराइट, सो चलें जी आगे बात करेंगे तफसील से. जरीन अवान, मलिक जरीन अवान भाई, गुड मॉर्निंग. एबटाबाद से आपने मैसेज किया, लाहौर के वाकया बहुत अफसोस हुआ, ऑस्ट्रेलिया को बहाना मिल जाएगा. बिल्कुल मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा. कहते हैं जी भाई आज बारिश का चांस है. अच्छा, यानी अगर एबटाबाद में बारिश का चांस है, इसका मतलब ये कि नथिया गली वगैरह में फिर बर्फबारी का सीन ऑन है. ऑलराइट, एंड देन जीशान उल्लाह कहते हैं इन द नेक टेंशन है. बिल्कुल ठीक है जीशान, आप भी जो है बात कर रहे हैं ऑन द नेशनल अकाउंट्स कमेटी के हवाले से, जिसमें कल जीडीपी का नया नंबर जो है वो रिलीज किया गया है. सलीम बाबर साहब कहते हैं, अब्दुल रहमान, यार ये कंफ्यूजन है, सलीम बाबर साहब हैं आप, अब्दुल रहमान हैं, जरा मुझे कंफर्म तो करके बताएं आप कौन है आखिर. विल द रियल सलीम बाबर प्लीज स्टैंड अप. ओके, कहते हैं यू आर डूइंग एन अमेजिंग, थैंक यू सो मच. कहते हैं लिसन टू द न्यू कोक स्टूडियो सॉन्ग विद यूआर बी इन इट, आई एम अ लिटिल डिसअपॉइंटेड बाय द सॉन्ग, व्हाट आर योर थॉट्स, आई हैवन हर्ड द सॉन्ग येट. मैं सुन लेता हूँ फिर मैं आपको जो है वो बता देता हूँ बाद में ये. ओके, एंड देन जुल्फी, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट. फहीम अली खान कहते हैं, ब्रो प्लीज डिस्कस अबाउट बोरिस जॉनसन स्पीच. बोरिस जॉनसन स्पीच पे हम बात कर लेते हैं. आपको पता है बरतानिया अपने ज्यादातर कोविड रिस्ट्रिक्शंस को जो है वो अब खत्म करने का, इट्स द बिगिनिंग ऑफ द एंड देयर इन यूके. दे हैव बाय फार द मोस्ट अग्रेसिव पॉलिसीज कोविड खत्म करने के हवाले से. सो इस पे हम बात करते हैं, बिल्कुल आगे बात करते हैं. हैप्पी बर्थडे टू मुस्तफा, दैट इज ग्रेट. पीर जहीर साहब ने भेजा है, मुस्तफा इफ यू आर लिसनिंग. मोहम्मद इरफान, गुड मॉर्निंग. नवीद खोकर साहब ने कहा इस्लामाबाद एयरपोर्ट राइट नाउ, वाओ लुक एट द फॉग इन इस्लामाबाद, दैट्स प्रीटी कूल. इसके अलावा उमर अहमद शेख कहते हैं, यूसी यूनियन काउंसिल साइज इंटीरियर सिंध 22,000 पीपल, यूनियन काउंसिल साइज इन कराची इज 60,000, व्हाट्स द साइंस अदील भाई. आई थिंक इट्स द एरिया, द सिटीज टेंड टू बी डेंसली पॉपुलेटेड. शहर जो होते हैं वहाँ पे आबादी का जो है जो गुंजान आबादी ज्यादा होती है, इस वजह से ये चीज. आई डोंट सी एनीथिंग रॉन्ग इन दैट. मेरे ख्याल से जो मसला असल आता है ना वो आता है द नंबर ऑफ सीट्स, नंबर ऑफ पीपल इन एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी. ठीक है, इस पे भी बात की जा सकती है. वजाहत कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर फिट एंड फैट. नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फिट एंड आई एम नॉट फैट. अल्हम्दुलिल्लाह, वो बहुत मेहनत किया उसके लिए. हमारी गाड़े वाली बाबू जो आपके फोर्स लिस्टनर है बट ही लाइक्ड इट, हैज अ फरमाइश ऑफ अ सॉन्ग. चले, उन्होंने गाने की फरमाइश की है. ओहो, सज्जाद अली साहब पे गाने की, अब सज्जाद अली साहब का गाना और आपने बड़ा खूबसूरत गाना जो है ना बोला. ये बेसिकली चले इनके वैन के मुझे लग रहा है कि साथी हैं और फोर्स लिस्नर हैं, गाड़ी वाले बाबू हैं. ठीक हो गया, तो इनको इनकी पसंद का गाना चला के इनको अनफोर्स लिस्नर बना देते हैं हम. ठीक है, ओके. पाकिस्तान बीट इंडिया ऑन 24. ठीक है, थैंक यू सो मच वहीली, ये तो हमें रेहान साहब ने बता दिया. एंड अब आखिर के दो तीन मैसेज और शामिल कर लेते हैं बिफोर आई हेड टुवर्ड्स द न्यूज़पेपर हेडलाइंस. अमर हुसैन कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम, अ कोल्ड फॉगी मॉर्निंग हियर, वाज इन कराची फॉर अ लास्ट कपल ऑफ डेज, और ये देखकर बड़ा अफसोस हुआ कि हमारे शहर के साथ बहुत के लोग बहुत सीरियस हैं कोरोना को लेकर. वी नीड टू गेट सीरियस. नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में कौन से शहर के लोग सीरियस हैं भाई कोरोना के हवाले से? आप बस मुझे बता दें,
कि मीरपुर माथेलो के लोग कोरोना के हवाले से बहुत सीरियस है. आदिल भाई तो मैं मान जाता हूँ, वरना मुझे कौन सा शहर सीरियस है यार. मेरी अभी टीम के कुछ लोग निकले हुए पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के दौरे पे, एक अल्लाह का बंदा जो मास्क लगा हुआ नजर आ रहा हो, यानी हद है. तस्वीरें आती रहती हैं मेरे पास. उमर अहमद साहब कहते हैं यस पाकिस्तान बीट इंडिया 24, इंशाल्लाह वी विल बीट देम ऑन द 23rd ऑफ अक्टूबर एज वेल. ये वाला कॉन्फिडेंस चाहिए, जबरदस्त है. जाहिद खान कहते हैं सलाम गुड मॉर्निंग फ्रॉम असना एंड अनस, बोथ आर वेरी हैप्पी ऑन द नॉमिनेशन ऑफ बाबर आजम एज ओडीआई एंड टी20 कैप्टन. जबरदस्त माशाल्लाह, ये तुम्हारी गेम चल रही है. स्पेशली असना इज वेरी हैप्पी, दैट मीन असना इज अ बिग बिग बाबर आजम फैन. All right, I'm so happy to see Fawad Alam there, yaar, in the test team. Khuda ki kasam, maza aa gaya, yaar. All right, Arisha, good morning to you. And she's waiting for Pani Ka Bulbula. Arisha, Pani Ka Bulbula, toh maine chala bhi diya, yaar. I'm so sorry, yaar. Tumne miss kar diya, mujhe lagta hai. Chale ji, aaj ke akhbarat mein zahir hai, aapko pata hai ki is waqt jo sabse badi khabar hai, kal wo Lahore mein hone wala dhamaka ek baar phir se Pakistan mein dehshatgardi kuch sar uthati hui nazar aa rahi hai, aur ye परेशान कौन सी सूरत हाल है. और हुआ यह है कि लाहौर में अनारकली के एरिया में जो है वो धमाका हुआ है, जिसमें बच्चे समेत 3 अफराद जहां भाग और दोनों 30 जख्मी हुए. दिन पौने 2 बजे लोहारी गेट के सामने धमाके से अफरा तफरी है, माल तेर लरस गई आग से. स्टॉल्स, मोटरसाइकिलें तबाह. मरने वालों में अफसार, रमजान और यासिर शामिल हैं. 3 खवातीन भी जख्मी हुई हैं. 4 की हालत जो है वो तश्वीशनाक बताई गई है. जाहिर है सब ने जो है वो उसकी मजम्मत भी की है, और एडमिनिस्ट्रेशन ने यह भी कहा है कि दहशतगर्दी करने वाले जो हैं ये बच नहीं पाएंगे. बट 12 लाख पता चल गया होगा कि एक कोई नई तंजीम कोई आई है BNA, जिसने इसकी जिम्मेदारी जो है वो कबूल की है. लेकिन अफसोसनाक वाकया ये हुआ है, और अल्लाह ताला बस रहम करे जी. ओके, और क्या सिलसिला जी. तौहीन अदालत के साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है. सहाफियों के खिलाफ तहम कार्रवाई जो है वो मौखर कर दी गई है. राना शमीम पर 9 इल्जामात, साबिक चीफ जज का सेहत जुर्म से इनकार. इंक्वायरी और अटॉर्नी जनरल को हटाने की दरख्वास्तें खारिज. शवाहिद मिले तो सहाफियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी. ये अतर मिनल्ला साहब जिस बेंच को लीड कर रहे हैं, उन्होंने जो है ना वो इसके बारे में ये फैसला जो है ये दे दिया है. इसके पूरा बैकग्राउंड और ये सारी चीज़ें, क्या आर्ग्यूमेंट पेश किया है, क्या उसके हक में आया है, क्या उसके खिलाफ आया है, ये आप सब इसकी कार्रवाई को आई एम प्रीटी श्योर सब बहुत गौर से देख रहे होंगे. ये मामला स्टार्ट हुआ था जब अंसार अब्बासी साहब ने जंग अखबार में एक एफिडेविट शामिल किया था, जिसमें राना शमीम ने जो है वो कुछ इल्ज़ाम लगाए थे जुडिशरी. राना शमीम जो ऑफकोर्स नून लीग और मियाँ साहब के काफ़ी करीबी माने जाते थे, उन्होंने इल्ज़ाम लगाए थे कि जी जो आपके चीफ जस्टिस थे साकिब निसार, उन्होंने इंश्योर किया था कि इनको सजाएं बजाएं मिले नवाज शरीफ साहब को इलेक्शन से पहले एंड स्टाफ. सो बहरहाल जी उसमें फिर ये पटा हो गया कि ये किस कहां से लीक हुआ, क्या हुआ. राना शमीम कहते हैं मैंने तो इसको एक वॉल्ट में रख दिया था, मेरे से नवासे को पता था, ये कहां से निकल के वहां पर आ गया. उन्होंने जो है वहां के जो नोटरी था उस पर इल्ज़ाम लगा दिया बरतानिया के, इसने लीक कर दिया होगा. वो कहता है मैनू की पता है यार, वो मूवी पंजाबी में ही बोल रहा होगा मेरे ख्याल से वो गोरा. लेकिन बहरहाल ये सीन अजीब सा बहरहाल हुआ. एनीवे, वी ऑल नो व्हाट इज दिस यार, वी ऑल नो. एनीवे चलें जी आगे बढ़ते हैं. ऑलराइट, वजीर आजम और बिल गेट्स में राबता, पोलियो और कोरोना के खात्मे पर तबादला ख्याल. ओके, नस्ला टावर के साबिक DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मंजूर काका समेत 21 मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज. आपकी शायद नॉलेज में हो, मंजूर काका जो पाक कराची में नहीं रहते वो नहीं जानते होंगे शायद. ये मंजूर काका जो है ये एक बहुत ही बदनाम जमाना ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के ये DG हुआ करते थे, और जितनी ये काफ़ी बड़ी तादाद में पीपल्स पार्टी के दौर में जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई हैं उसमें ये इनका कुछ नाम जो है वो लिया जाता है. लेकिन वी ऑल नो दैट, आई मीन ही एस्केप टू, ये कैनेडियन नेशनल थे, ये अब कैनेडा में एंड मस्ट बी आई एम श्योर सैस्केटून में कोई बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार रहे होंगे अपनी, और यहाँ पे उनके खिलाफ हम यहाँ मुकदमेबाजियां कर रहे हैं. बहरहाल आगे बढ़ते हैं. ऑलराइट, वजीर आजम कहते हैं हुकूमत जाती मफाद नहीं बल्कि अवामी बहबूद के लिए काम कर रही है. ठीक हो गया जी. नून लीग की अदलिया को दबाव में लाने की तारीख सबके सामने है, ये भी कहना है वजीर आजम साहब का. राना शमीम केस बुरी तरह बेनकाब हुए हैं, माफिया का मुकाबला करेंगे, इजलास से उन्होंने जो है वो खिताब किया है. Okay, चीन का ये कहना है कि पाकिस्तान में CPEC की रफ्तार सुस्त नहीं, कोरोना के बावजूद मुस्बत पेशरफ जारी है, बेशतर मंसूबे मुकम्मल हो गए. ज़राअत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी साइंसी और तकनीकी ग्रुप तश्कील दिए जा चुके हैं, ये उनकी वजारत खारजा के तर्जुमान ने. और तर्जुमान कौन है? अपना भाई जावली जैन जी, तो वो अपना दोस्त है, आपको पता ना जो पाकिस्तान में हुआ करता था, तो उसने जो है कल ब्रीफिंग दी है कि यार सी पैक में कोई सुस्ती जो है वो देखने में नहीं आई है, बल्कि सी पैक जो है वो तो अब यहाँ पे नेक्स्ट फेज में दाखिल हो चुका है। 11 अरकान काबीना अरकान को वजारत नामिनी लग्जरी गाड़ियां मिल गई, क्या बात है। मुशीरान और उनके मौविनी ने खसूसी ने 1800 cc गाड़ियां ले रखी हैं, वेरी नाइस। और कराची हैदराबाद में कोरोना पाबंदियों पर आज से अमल दरामद का हुक्म, महकमा दाखिला का नया नोटिफिकेशन, 12 साल से कम उम्र तलबा की निस्फ तादाद जो है वो स्कूल आएगी। अपोजिशन का ये कहना है कि गलत पॉलिसियों से दहशतगर्दी दोबारा शुरू, मंसूबा साजों को गिरफ्त में लेकर आए। नवाज जरदारी सबका जो है उन्होंने शोक का इजहार किया है। मरियम का ये कहना है वजीर आजम की बेहिसी जो है वो एक बार फिर से वाजे हो चुकी है। वजीर कानून का ये कहना है फौजदारी कवानीन में तरामीम, मुशावरत से तैयार, मंगल को काबीना में लाएंगे, हर केस को हल करने के लिए टाइम फ्रेम होगा। और ये बेसिकली फरोग नसीम साहब ने कल कामरान खान साहब से जो है वो बात की है उनके प्रोग्राम में, और उसमें उन्होंने ये बताया है कि जी ये जो पाकिस्तान में फौजदारी कानून है उसमें जो तब्दीलियां लाई जा रही हैं, और ये क्रिमिनल जस्टिस का पाकिस्तान में स्लो और फरसूदा निज़ाम है, जो केसेस डेकेड्स तक चलते हैं, किस तरह उसको जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, अगर ये इम्प्लीमेंट हो गया तो यार लोगों का बड़ा भला हो जाएगा। वरना आपको तो पता है कि तारीख पे तारीख और नस्ल दर नस्ल जो है ये केस चलते रहते हैं। अब ये कह रहे हैं कि जी टाइम बार कर दिया जाएगा कि इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर फैसला जो है वो आवे ही आवे। अच्छा जी, रेकॉर्ड एक केस के हवाले से एक बहुत पॉजिटिव खबर आई है, कहते हैं जी पाकिस्तान और टीथियान कॉपर में 50% शेयर पर इत्तेफाक हो गया, और कहते हैं ये बड़ी खबर है, नाउ दैट्स अ बिग न्यूज, जिसपे मेरे ख्याल से मैं सिर्फ एक शहसु हमें इस पर ज़रा तफसील से बात करनी चाहिए, बिकॉज ये आपको पता है पाकिस्तान के एक चीफ जस्टिस साहब हैं जो कि अपनी एक बहुत ही लेगेसी छोड़कर गए थे, ये जो पाकिस्तान के लिए बड़ी खतरनाक भी है। लेकिन इस वक्त बहरहाल जी टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक का हुआ है वक्त, मिलेंगे आपसे उसके बाद खेलों की खबरों के साथ, सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप अस। ओके माय गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं, दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील अज़हर, एंड या लेट अस स्टार्ट ऑफ कोर्स विद क्रिकेट। और क्रिकेट में आपको हम बताते ये चले दैट ऐलान हो गया है भाई T20 वर्ल्ड कप का 2020, और अभी तो वर्ल्ड कप हुआ था, लेकिन खैर एनीवे आई मीन यू गाइस ऑल नो अबाउट इट एंड स्टफ, के यार कहानी जो है वो है क्या, एंड यू नो के यार ये वर्ल्ड कप था जो कि पोस्टपोन हो गया था, और उसमें यू नो के वो फिर इंडिया वाला जो वर्ल्ड कप था वो UAE में हो गया था, और जो ऑस्ट्रेलिया वाला था वो उन्होंने कहा था तुम उसको अगले साल ले जाओ, तो वो अब 2022 में जो है वो अक्टूबर नवंबर में होने वाला है, जिसके हवाले से जो है वो कल इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने मैचेस के शेड्यूल का जो है वो ऐलान कर दिया है, और इसके अलावा ग्रुपिंग्स एंड ऑल एंड स्टफ। सो अभी क्या हुआ है जी, एक बार फिर से इंडिया एंड पाकिस्तान इन द सेम ग्रुप, एंड ऑफ कोर्स अब ये ICC के लोंडो की साजिश है, आपको पता है कि ये क्या करते रहते हैं हरकतें, लेकिन फिर उन्होंने इंडिया पाकिस्तान को जो है वो एक साथ ग्रुप में डाल दिया है, और पाकिस्तान इंडिया विल बी टेकिंग ऑन ईच अदर ऑन द 23rd of October एट द MCG, और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर को 1 बजे बताते हैं कि जी ये मैच खेला जाएगा। सो कूल मैन, सो कूल, जो भी है सिलसिला, लेकिन खैर ये हो गई बात। पाकिस्तान के साथ इस ग्रुप में ग्रुप बी विनर भी होगा, ग्रुप ए रनर अप भी होगा। साउथ अफ्रीका इज आल्सो गोइंग टू बी इन दिस ग्रुप विद पाकिस्तान। सो ठीक है, चले जी, तो बहरहाल दिस इज नाइस, और ऑलरेडी इसके पिक्चर्स जो हैं वो आ गए हैं। आपको पता है क्वालिफिकेशन का मरहला भी खेला जाना है, उसमें टीमों को क्वालिफाई करके भी जो है वो पहुंचना है, एंड स्टफ। सो और बाकी क्या सीन है, बाकी हम बात कर लेते हैं अंडर 19 वर्ल्ड कप के हवाले से, जिसमें पाकिस्तान ने जो है वो कल कामयाबी हासिल की। अंडर 19 वर्ल्ड कप के इस मैच में पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ जो है वो मुकाबला था, और पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान ने बनाए 239 रन, स्लाइटली अंडर पार परफॉर्मेंस बाय पाकिस्तान। वो तो एंड में थोड़ा बहुत माज शफकात ने जो है वो 42 रन बना लिए, वरना तो सिचुएशन पाकिस्तान के लिए काफी गंभीर हो सकती थी। 3 खिलाड़ियों को आउट किया इजहार उल हक नवीद ने फ्रॉम अफगानिस्तान, उन्होंने 41 रन जो हैं वो दिए, और ऑफ कोर्स लेग ब्रेक बॉलर, और आपको पता है पाकिस्तानी जो है ना वो जो भी उम्र की कैटेगरी हो, अंडर 19 हो, सीनियर टीम हो, वेटरन टीम हो, वो आपको पता है स्पिनर्स के सामने, लेग ब्रेक बॉलर के सामने जरा पाकिस्तानियों को मसला ही होता है। लेकिन खैर नहीं बचा ना जी, जवाब में अफगानिस्तान देव इन टू द चेस, बल्कि कह सकते हैं कि 104 रन पर उनके 2 खिलाड़ी आउट हुए थे, और लग यही रहा था कि दे आर ऑन फॉर मे बी माइनर अपसेट, बट बहरहाल फिर उसके बाद पाकिस्तान ने किया एक अच्छा कमबैक पाकिस्तान की जानिब से, 3 विकेटें हासिल की अवैस अली ने 9 ओवर में 36 रन देकर. असमाज सदाकत ने जो है वो एक खिलाड़ी को आउट किया और कासिम अकरम जो है उन्होंने 2 विकेटें हासिल की. पाकिस्तान की ऑफकोर्स ये कामयाबी के बाद पाकिस्तान हैज मैनेज टू क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट राउंड. पाकिस्तान को भी एक मैच और खेलना है, वो पापुआ न्यू गिनी के साथ है, लेकिन जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान का मैच जो है वो डिसाइड करेगा कि इस ग्रुप से आगे और कौन बढ़ेगा पाकिस्तान के साथ. ठीक हो गया. इसके अलावा आज इंडिया बनाम साउथ अफ्रीका इस सीरीज का डिसाइडर भी हो सकता है. हाल में ये दोनों टीमें एक दूसरे के आमने सामने होंगी. पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1:30 बजे ये मैच खेला जाएगा और ज़ाहिर है केएल राहुल की क़यादत में हिंदुस्तानी टीम जो है दे आर अंडर प्रेशर राइट नाउ. इसमें कोई शक नहीं है. टेस्ट सीरीज में जो है वो इनको नाकामी का सामना करना पड़ा और अभी ओडीआई सीरीज में भी एक ऐसे मैच में जिसमें दे वर लुकिंग वेरी गुड एट वन पॉइंट इन टाइम, वहां पे इस मैच में इनको शिकस्त हुई. सो या एज आई सेड इंडियन टीम इज अंडर प्रेशर बिकॉज दे लूज टुडे, दे लूज द ओडीआई सीरीज एज वेल, बट बी वेरी ऑफ दिस इंडियन टीम. ये they can hit back and they can come back pretty strong. All right, जी. इसके अलावा आपको बताते चलते हैं EFL कप के हवाले से, जिसको कैराबाओ कप भी कहा जाता है और उसमें आर्सेनल को कल शिकस्त हुई है. सो आफ्टर अ लॉट ऑफ हाइप अराउंड आर्सेनल ने जो बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस एक पुट अप की थी एट द एनफील्ड डिफेंसिव डिस्प्ले yesterday was not their day. 2-0 से इनको जो है वो नाकामी हुई है इन द सेकेंड लेग ऑफ दिस सेमी फाइनल. और जिसे कहते हैं इसमें खोता जो है ही स्कोर्ड 2 गोल्स एंड या दे हैव सेट अ डेट विद चेल्सी फरवरी के एंड में इसका फाइनल जो है वो खेला जाएगा. एंड चलें जी, आर्टेटा क्या कहते हैं, a huge missed opportunity for Arsenal. Okay, ठीक हो गया. Then we have got the African Cup of Nation के हवाले से ही बताते चलते हैं आपको. होल्डर्स यानी जो डिफेंडिंग चैंपियन थे अल्जीरिया, उनको हुई है शिकस्त आइवरी कोस्ट के हाथों और इसका मतलब ये हुआ कि द डिफेंडिंग चैंपियंस आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट इन द ग्रुप स्टेज. ये इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि जो अल्जीरिया की टीम है जिसको रियाद महरेज जैसे टॉप प्लेयर्स की जो है वो खिदमत हासिल है, उनको शिकस्त हुई थी अपने पहले ग्रुप स्टेजेस के गेम में. आई थिंक इट वॉज अगेंस्ट द इक्वेटोरियल गिनी. और अब कल के मैच में जो है उनको आइवरी कोस्ट ने शिकस्त दी और आइवरी कोस्ट से शिकस्त के बाद जो है द टीम इज आउट ऑफ द टूर्नामेंट नाउ और वेरी डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट फॉर देम. इसके अलावा कैमरून हैज क्वालिफाइड फॉर द नेक्स्ट राउंड, द होस्ट कैमरून अफ्रीकन कप ऑफ नेशन. हर 2 साल में ये टूर्नामेंट होता है और इसमें इस बार कैमरून में ये टूर्नामेंट हो रहा है. एंड एनीथिंग एल्स इन दिस, इजिप्ट आर थ्रू बाय द वे. उन्होंने जो है वो शिकस्त दी, इजिप्ट ने जो है वो शिकस्त दी थी सूडान को क्वालिफाई करने के लिए. एंड देन द स्टोरी ऑफ दिस टूर्नामेंट, 2 स्टोरीज हैं यार. एक तो कोमोरोस की टीम है, स्मॉल टाइनी आइलैंड नेशन on the eastern shore of Africa. Comoros ki team jo hai wo agle round mein pahunch gayi hai. And the Gambia, the smallest country in Africa, wo bhi agle round mein pahunchne mein kamyab hua. Bada kamal tournament yaar, ye mazedar sa tournament hota hai. Kafi vaishi kism ka tournament bhi ho raha hota hai, lekin yahi to African Cup of Nations ki pehchan hai. Liye chalte hain aapko, aisa karte hain abhi messages aap pe jo hai na wo zara nazar dal dete hain. Thode se hum program mein shamil karte hain aur phir uske baad hum ek break ki janib jo hai वो बढ़ते हैं. रिजवान जकी साहब कहते हैं यस सर, व्हाट अ ग्रेट टाइम व्हेन यू सी यू 3 कंडक्टिंग द प्रोग्राम 8 to 9 AM. ओके ब्रिलियंट, थैंक यू सो मच. यस ब्रिलियंट मेमोरीज जी. और पीर जहीर साहब गाना सुनना चाहते हैं कुक स्टूडियो का और मेरे पास अभी तक वो मुझे नजर नहीं आ रहा है अपने फोल्डर में, बट आई कैन सी फरी सरफराज एक गाना की रिक्वेस्ट उन्होंने की है. ओके इशाल इज वेविंग मी गुड बाय, शी इज हेडिंग टू स्कूल, दैट इज सच अ क्यूट मैसेज, थैंक यू सो मच. And then we have got Shahrukh says, good morning Adil, please warn people not to travel to Murray as heavy snowfall is expected on weekend. Khuda ke liye be careful, it's raining here in Islamabad. I really hope people understand that. Abhi haal hi mein itna bada saneha hua hai, so really hope that abhi jo weekend pe barfbari Murray mein aur galiyat mein ho sakti hai, please be very very careful. गुलाम सरवर साहब कहते हैं जो बिछड़ गए सुकूत ढाका के मौजू पर एक अच्छा ड्रामा है, मौका मिले तो जरूर देखिएगा. यस लॉट्स ऑफ पीपल टॉकिंग अबाउट द ड्रामा, लेकिन पता नहीं समा हो यार पता नहीं निकल हिम्मत नहीं हो पा रही है देखने की, कोई ड्रामा यार, आई डोंट नो, बट देखते हैं चलें. आतिफ जब्बार साहब कहते हैं फ्राइडे मॉर्निंग टू ऑल, गुड फ्राइडे मॉर्निंग टू ऑल द लिसनर्स, यू आर स्प्रेडिंग एनर्जी वाइब्स ऑन योर शो, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया यार. और कहते हैं एवरी लिसनर एब्जॉर्ब्स दीज एनर्जेटिक वाइब्स, कितनी खूबसूरत बात की आपने, थैंक यू सो मच सर. कहते हैं टुडे द वाइब्स फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई, ओके चलें जी, देयर कुड बी अ रीजन फॉर दैट. ओके अभी हम लिए चलते हैं आपको एक ब्रेक की जाने, और ब्रेक के बाद आगे प्रोग्राम अपना कंटिन्यू करेंगे. रिमेंबर गाइस, वी आर ड्यू फॉर अ डिस्कशन ऑन द इकोनॉमिक्स, द रीबेसिंग, जो फाइनेंशियल कैलकुलेशन करने के लिए जो रीबेस किया जा रहा है. अरे यार मैंने उसकी तो बात ही नहीं की यार, आईसीसी टीम ऑफ द ईयर, जल्दी से बात कर लेते मेरे को 30 सेकंड. यार माशाल्लाह क्या हम पाकिस्तानियों ने रौनक लगाई हुई है. आईसीसी की जो टीमें आई जा रही हैं, पहले हमने देखा T20 टीम में 3 पाकिस्तानी, कप्तान भी उनका पाकिस्तानी, वेल डन. उसके बाद जो है वो आपकी ओडीआई टीम आती है जिसका कप्तान पाकिस्तानी, और फिर उसके बाद हमने देखा कि टेस्ट टीम आती है जिसमें माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे फवाद आलम साहब जो हैं वो आपको एक्शन में नजर आते हैं. व्हाट अ स्टोरी मैन फवाद आलम, अमेजिंग. मेंस जो टेस्ट टीम है जिसमें कप्तान उन्होंने जो है वो केन विलियमसन को बनाया है, जिसमें करुणा रत्ने हैं, रोहित शर्मा, चलेंगे थोड़े बहुत इंडियंस भी नजर आई गए, जो रूट मैन इस लेवल शॉइन, एंड देन वी हैव गॉट फवाद आलम, वाह, ऋषभ पंत, रविचंद्रन अश्विन, काइल जेमिसन, हसन अली एंड शाहीन शाह अफरीदी. दैट मींस दोनों अटैकर्स हमारे पाकिस्तान के यार माशाल्लाह. T20 टीम में मोहम्मद रिजवान देयर, बाबर आजम कैप्टन, ये हम कल बात कर चुके थे. इसके अलावा तीसरे पाकिस्तानी शाहीन शाह अफरीदी इज देयर. अगर हम ओडीआई टीम के हवाले से बात करें तो बॉबी किंग इज द कैप्टन, फखर जमान इज ऑल्सो देयर, सो 2 पाकिस्तानी इन दैट टीम एज वेल. बाकी में पॉल स्टर्लिंग, यानमन मलान, एंड देन रासिफ फांडर ड्यूसन, शकीबुल हसन, मुशफिकुर रहीम, हसारांगा, मुस्तफीजुर रहमान, सिनी सिंह एंड चमीरा फ्रॉम श्रीलंका. यार वैसे श्रीलंकन प्लेयर्स को देख के भी खुशी हो रही है ना, वैसे यार श्रीलंकन को देख के खुशी होती है, अपने साथ अगर किसी और की खुशी हमें हो रही होती है. बाय द वे दिस सिमी सिंह गाय, यू नो पता है ना इनका कि इज अ ही प्लेस फॉर आयरलैंड. या चलें जी, ग्रेट, अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने, उसके बाद एक गाना सुनेंगे, वापस आके फिर हम प्रोग्राम कंटिन्यू करते हैं. डोंट गो एनीवेयर, कीप लिसनिंग. यार क्या कमाल गाना है यार, चस्प आ गया आईओडी का दावे, वाह ब्रिलियंट. दैट वाज आतिफ असलम, गोक स्टूडियो सीजन 6, दैट वाज चन्ना, एंड या वे चन्ना. चलें जी, ग्रेट, 8:26 हो चुके हैं, सनराइज शो, दिल की आवाज आप तक पहुंच रही है. गुड मॉर्निंग दोस्तों, ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. रियान अलवी साहब, आपके मैंने जो वीडियो आपने भेजी है, क्योंकि कम रफ्तार में थी, और एक सोशल प्रॉब्लम की तरफ जो यहाँ पे सड़कों का हाल है काला पुल की तरफ, उसकी तरफ इशारा कर रही है, तो मैंने इसको रीट्वीट कर दिया है. हमारे दोस्त नुमान यूसुफ साहब जो है वो इस वक्त प्रोग्राम सुन रहे हैं हैदराबाद में. वेलकम टू द शो माई फ्रेंड, एंड स्लाइटली फॉगी हैदराबाद, नयाज स्टेडियम की कुछ झलकियां इनको जो है वो नजर आ रही है, कुछ झलक जो है वो नजर आ रही है. अच्छा स्टेडियम हुआ करता था, तबाह हो गया बिल्कुल. खैर बहरहाल जी, अरशद गुमरो कहते हैं लेजेंड लीग के मैच का क्या हुआ. अब छोड़ दो यार लेजेंड लीग वो क्या, हमारे पास कम खबरें जो हम लेजेंड लीग की भी बात करना शुरू करते हैं अब यार, वो छोड़ दो, बस ऐसी वो दिल लगी के लिए बड़े मियाँ सब क्रिकेट खेलने पहुंच गए हैं. ओमान में हो रही है मेरे ख्याल से. इंजीनियर तौसीफ साहब कहते हैं प्लीज एक्सप्लेन इकोनॉमिक डिटेल शेयर्ड बाय द गवर्नमेंट यस्टरडे, थोड़ी देर बाद शेयर करते हैं सर इसको. इसके अलावा खुर्रम साहब, खुर्रम अख्तर साहब कहते हैं आई एम टेकिंग माय वाइफ टू AKUH फॉर हर ट्रीटमेंट, प्लीज विश माय वाइफ राबिया खानम फॉर बेस्ट ऑफ हेल्थ. आई रियली डोंट नो व्हाट इज टेकिंग हर टू द हॉस्पिटल, लेकिन हमारी बहुत सारी दुआएं खुर्रम साहब आपकी वाइफ राबिया के लिए, अल्लाह ताला उनको जो है वो जल्द शिफा अता फरमाया, आमीन सुमा आमीन. इमाद उल हक ने मैसेज किया और बताते हैं हमारे बहुत रेगुलर लिसनर हैं सलमान शिमजा, उनके वालिद साहब जो हैं इज बिन इन ICU फॉर द पास्ट 3 डेज, एंड आई हैव जस्ट टेक्स्टेड सलमान, एंड इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनको जल्द शिफा देगा, और गुड लक एंड गुड विशेस फॉर हिम एंड लॉट्स ऑफ प्रेयर्स. बाकी लोग भी याद रखिएगा. मुनीब मकबूल साहब कहते हैं नाइस फॉगी मॉर्निंग हियर इन इस्लामाबाद, एंड द पिक्चर लुक्स एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल. आप जिस पार्क में, मुझे F9 पार्क लग रहा है मुझे ख्याल से, ये इट इज ब्यूटीफुल. हैज ICC अनाउंस्ड प्लेयर ऑफ द ईयर एज वेल? नो, नॉट येट प्लेयर ऑफ द ईयर, बस अभी अनाउंस होने को है, और यस जिगर थाम के बैठी है, हो सकता है मेनी पाकिस्तानीज वुड बी विनिंग देयर एज वेल टू. ऑलराइट, जल्दी से बात करते हैं जरा बर्तानिया के हवाले से, एंड बर्तानिया में जो है वो ऑफिशियली आई थिंक जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहाँ पे भी आपको पता है वैसे ही जो वैक्सीनेशन और ये सारी चीज़ें जो हैं इन्होंने दे हैव डन रियली वेल अबाउट दैट, और बर्तानिया उन मुल्कों में से है कि हु बीन वेरी अग्रेसिव एज फार एज लिफ्टिंग ऑफ कोरोना रिस्ट्रिक्शंस इज कंसर्न. जाहिर है हमें ये बात पता है कि बोरिस जॉनसन, वो उनका अपना एक मसला चल रहा है, उन्होंने शायद कभी कोरोना की इन रिस्ट्रिक्शंस को बहुत ज्यादा सीरियस लिया नहीं, लेकिन फिर भी बहरहाल बरतानिया में रिस्ट्रिक्शंस थी और लोगों को उन पे अमल करने पे फोर्स किया जा रहा था, और ये इसीलिए इज इन द हॉट वाटर्स, ये इसीलिए मुश्किल में आए हुए इस वक्त बोरिस जॉनसन, कि एक तरफ आपने आम आवाम को जो है सख्तियां की हुई और आप लोग जो है वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट में पार्टीज चल रही है. सो बरतानिया में, ये पाकिस्तान जैसे मुल्कों में इसका इतना मसला नहीं होता, लेकिन बरतानिया में वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में जो एडवांस डेमोक्रेसीज हैं वहां पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मानी जाती है. लेकिन बहरहाल जो बोरिस जॉनसन है इज फाइटिंग, आप ये अभी भी लड़ रहे हैं, अपना बैटल लड़ रहे हैं, अभी भी उनको सपोर्ट हासिल है बहुत सारे लोगों की, अपने करीबी सर्कल्स की, लेकिन उनकी पार्टी के बहुत सारे लोग जो हैं वो उनका साथ भी छोड़ रहे हैं. अच्छा जी आगे बढ़ते हैं, लेकिन अभी बात करते हैं कि बर्तानिया में उनका था जी एक था प्लान ए और दूसरा था प्लान बी. नाउ प्लान बी वॉज अबाउट रिस्ट्रिक्शंस, यानी पाबंदियां थी जिसमें मास्क मैंडेट्स थे, सोशल गैदरिंग्स वगैरह इन चीज़ों के हवाले से. सो बर्तानिया का ये कहना है कि दे आर नाउ रिवर्टिंग टू प्लान ए. प्लान ए मतलब क्या है जी, कि आपके जो मास्क मैंडेट्स वगैरह हैं वो अब ख़त्म हो जाएंगे, जो सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से जो आपने बात की गई थी वो चीज़ें जो हैं अब काफ़ी हद तक जो है वो ख़त्म हो जाएंगी और रेस्टोरेंट्स वगैरह जो हैं वो खुल जाएंगे. सो उन्होंने ये बोला है कि नेक्स्ट वीक आके, आई थिंक इट्स द नेक्स्ट थर्सडे 26th of January मेरे ख्याल से उन्होंने बात की है, जिसमें इन्होंने ये कहा है कि जी हम प्लान बी से अब एक बार फिर से मच लाइटर प्लान ए की तरफ जो है वो जा रहे हैं, जिसमें फेस मास्क विल नो लॉन्गर बी कंपल्सरी इन इंडोर पब्लिक स्पेसेस फ्रॉम 27th of January और एंड फॉर सेकेंडरी पीपल्स इन क्लासरूम्स फ्रॉम थर्सडे 20th of January. यानी उन्होंने तो स्कूलों में भी जो है ना, अच्छा ये बेसिकली बहुत डेटा ड्रिवन होते हैं और ये एक फैक्ट है, यानी ऑलरेडी पीपल हैव स्टार्टेड क्वेश्चनिंग, ना साइंसदान ये सवाल पूछना शुरू हो गए कि जो क्लासों में बच्चों को मास्क पहना के बिठाया जा रहा है क्या इससे वाकई कोविड फैलने से रोका जा रहा है. तो ये एक है इशू. अच्छा जी कोई अगर कोई रिस्ट्रिक्शन रह भी गई है इंपॉर्टेंट, तो वो है लीगल रिक्वायरमेंट टू सेल्फ आइसोलेट इफ यू टेस्ट पॉजिटिव और फॉर कोविड विल रिमेन नाउ. यानी कि कोई बंदे को कोविड हो जाता है और वो पॉजिटिव टेस्ट हो जाता है, उसको अभी भी आइसोलेशन में रहना पड़ेगा. उस रिस्ट्रिक्शन को खत्म नहीं कर रहे, लेकिन उसके अलावा अगर आप बात करें, सो ब्रिटेन एक्चुअली इज प्रीटी मच मूविंग टूवर्ड, वो जो प्री कोविड टाइम था वो वहां पे पहुंच रहे हैं, बिकॉज उनका ये कहना है कि यस ओमिक्रॉन का नंबर काफी है जो भी है फलाना, बट इट हैज पीक्ड आउट. अगर आप जाएं गूगल पे जाके लिखें भी यूके कोरोना वायरस केसेस, तो आपको जाके बड़ा क्लियरली इस बात का अंदाजा होगा कि वाकई ये इनका जो है ये पीक टच करके अब ये बिल्कुल ढलान की जानेब है, ये नीचे की जानेब जो है ये जा रहे हैं. और ये कोविड का एक्सपीरियंस जनरली रहा है. मैंने साउथ अफ्रीकन एग्जांपल गोटैंग की आपको दी थी, उनका जो प्रोविंस जहाँ पे ये पहली बार डिटेक्ट हुआ था, वो लोग भी पीक कर गए थे विद इन 2 to 3 weeks. बर्तानिया भी जो है वो 2-3 हफ्ते में पीक कर गया. एंड लेट्स जस्ट होप एंड फिंगर क्रॉस अबाउट पाकिस्तान एज वेल, कि हम भी जो है वो उसमें जल्दी पीक करके दीज नंबर ऑफ केसेज होपफुली मे बी वी नेवर नो बाय द फर्स्ट सेकेंड वीक ऑफ फेब्रुवरी द केस नंबर ऑफ केसेज विल स्टार्ट गोइंग डाउन, बिकॉज ये जिस तेजी से ये इन्फेक्शन फैला है, I think people are already heading towards a sort of natural immunity on this matter. So challenge ye ho gayi baat Britania ke hawale se. Welcome back guys, ek baar phir se aapko khush aamdeed kehte hain. This is the Sunrise Show with me Adil. चले जी अब जरा ना थोड़ा सा जरा इकोनॉमिक्स के हवाले से बात कर लेते हैं ना. मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पे ना एक वार्निंग देता चलूँ, एक चेतावनी देता चलूंगा यार, दिस विल बी अ स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड डिस्कशन, लेकिन मैं बहुत सारे प्रिंसिपल्स को फिलहाल इकोनॉमिक्स के साइड पे लगा के मैं आपको आसान तरीन अल्फाज में ये बताना चाहूंगा कि कल ये हुकूमत ने आखिर ये काम किया क्या है जिसके हवाले से लोग ये कह रहे हैं. जैसे सुबह अवान साहब का मैसेज आया था, और मैं अवान साहब को ब्लेम नहीं करता, उन्होंने कहा कि जी अपने नंबर्स को अच्छा दिखाने के लिए हुकूमत ने जो है वो अपनी बेस ही बदल दी, यानी जो बेस ईयर होता है उसको चेंज कर दिया, जिससे अब नंबर सारे जो है ना वो बड़े प्यारे प्यारे दिख रहे हैं. अच्छा मेरे जो भोले बादशाह स्पेशली जो नून लीग के दोस्त हैं उनके लिए मैं ये खुशखबरी बताऊंगा कि ये जो बेस ईयर चेंज करने से आपकी अपनी गवर्नमेंट की इसहाक डार साहब का जो बेस्ट ईयर की परफॉर्मेंस थी वो 6.1% पे आ गई है, जो कि शायद 5.8% पे थी, अब वो 6.1% पे आ गई है इस बेस ईयर को चेंज करने की वजह से. तो ये पॉइंट आपको समझ में आया, तो इसका आपको भी फायदा हुआ है ना. यू कैन डू फर्दर चेस्ट थम्पिंग के यार आप अपना और जो है ना वो अपना बजा सकते हैं ढोल के यार ये जो डार साहब तो इकोनॉमी को 6%+ लेकर गए थे. मैं नहीं कह रहा, ये तो देखो शौकत तरीन बोल रहा है और ये तो हमाद अजहर बोल रहा है, तो मुजम्मिल जो है ना ये बोल रहा है, तो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप, इसहाक डार साहब भी ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन उस 6.1% पे आने की जो कॉस्ट पाकिस्तान ने पे की है वो हम आज तक भुगत रहे हैं, उस पर मैं अब नहीं जाऊंगा, बिकॉज काफी उस पर मैं पिछले 3-4 साल पे रोना धोना कर चुका हूँ, जिसपे आप मेरे बहुत सारे लोग मुझसे शदीद नफरत भी करते हैं, लेकिन खैर आगे बढ़ते हैं. सो ये बेस वाली कहानी क्या है, ये क्या हुआ क्या है. देखिए जी पाकिस्तान की जो जीडीपी है ना वो अच्छा एक और बात समझ लें, जीडीपी क्या है सर, जल्दी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ. जीडीपी है मजमुई कौमी पैदावार. किसी भी मुल्क में, किसी भी मुल्क में जो टोटल नंबर की अशिया पैदा होती हैं, चाहिए जो चीजें मुल्क प्रोड्यूस करता है अपनी बाउंड्रीज, अपनी सरहदों के अंदर, उसको आप सिंपली कहते हैं जीडीपी. सिंपलों के बाद मजमुई कौमी पैदावार, इससे आसान डेफिनेशन और क्या हो सकती है. अच्छा, मजमुई कौमी पैदावार की ना फिर फर्दर दो डेफिनेशन आ जाती हैं. एक होती है रियल और एक होती है नॉमिनल. ठीक है जी, एक होती है रियल और एक होती है नॉमिनल. अच्छा, अब मजमुई कौमी पैदावार का जो ताल्लुक है ना वो चीजों के साथ है. लाइक मैं पहले जो है वो चार गुड्स प्रोड्यूस कर, यानी कि मैं जैसे कि ना मैं 10 गाड़ियां प्रोड्यूस करता था, ठीक है, अब मैंने जो है वो 12 गाड़ियां प्रोड्यूस करनी शुरू कर दी हैं. तो इसका मतलब ये, और हर गाड़ी की कीमत लेट से 10 रुपए थी, तो अगर मैं 10 गाड़ियां पैदा करता हूँ, हर गाड़ी की कीमत 10 रुपए, तो इसका मतलब मेरी मजमुई कौमी पैदावार सिर्फ 100 रुपए. अब मैंने गाड़ियां जो है ना वो 10 की बजाय 12 पैदा करनी शुरू कर दी हैं. गाड़ी की कीमत कितनी थी? 10. ठीक है, तो मैंने जब ये 12 गाड़ियां पैदा करनी शुरू की तो मेरी मजमुई कौमी पैदावार 100 रुपए से बढ़कर कितनी हो गई? 120. राइट. इसका मतलब ये कि मेरी मजमुई कौमी पैदावार यानी जीडीपी में जो इजाफा हुआ है वो 20% का हुआ है. जबरदस्त, बेहतरीन, ब्रिलियंट, क्लियर हो गई बात. कहानी में एक ट्विस्ट आता है. कहानी में एक ट्विस्ट तब आता है अगर फर्ज करें कि ये गाड़ियों की कीमत जो है, जो मैंने आपको बताई थी, वो अब 10 रुपए नहीं है, वो 10 रुपए से बढ़ के 12 रुपए हो जाती है. यानी पहले साल में 10 रुपए थी तो मैंने 100 रुपए का प्रोड्यूस किया, लेकिन दूसरे साल में जो है, फर्ज करें कि ये गाड़ियां मैं 12 प्रोड्यूस करता हूं लेकिन इसकी जो कीमत है वो बढ़ के अब 10 रुपए नहीं रहती, इसकी कीमत जो है वो बढ़ के 12 रुपए हो जाती है, तो इसका मतलब मेरी मजमुई कौमी पैदावार अब 120 नहीं बल्कि कितनी हो गई? 144 हो गई. सही कैलकुलेशन कर रहा हूं ना? हाँ, 144 हो गई मेरी. इसका मतलब मेरी जीडीपी 44% से बड़ी है. लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या मेरी जीडीपी वाकई 44% से बड़ी है, या मैं इसके लिए जो है वो प्राइस बढ़ने का फायदा उठा रहा हूं. समझ रहे ना मेरा आप ये पॉइंट? कीमत भी तो बढ़ रही है. मैं और स्मार्टी खेल सकता हूं, मैं स्मार्टी ये खेल सकता हूं कि फर्ज करें कि मैं एक्चुअली अपनी जीडीपी, यानी जो मैं गाड़ियां प्रोड्यूस कर रहा हूं, अब मैं 10 गाड़ियां प्रोड्यूस नहीं करता, मैं 9 गाड़ियां प्रोड्यूस करना शुरू कर देता हूं और प्राइस जो है वो मैं 12 रुपए पे ले जाता हूं. तो मैं अगर मैं प्राइस 12 रुपए पे ले गया तो 9 × 12 = 108. मैंने मेरी गाड़ियों की प्रोडक्शन यानी मेरी पूरी जीडीपी की प्रोडक्शन कम हुई है लेकिन मेरी जीडीपी 100 से बढ़कर 108 पे हो गई. यानी मैं मुल्क में कम चीजें प्रोड्यूस कर रहा हूं फिर भी मैं बताऊंगा कि वाह 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 देखें जी मैंने जीडीपी बढ़ाई है. सो ये फर्क होता है. जो रियल जीडीपी होती है वो इस कीमतों के बढ़ने वाले फैक्टर को जो है वो नजरअंदाज करती है. आप एक इस तरह का फॉर्मूला बनाते हैं कि आप कोई एक साल चूज करते हैं, ठीक है, आप कोई एक साल चूज करते हैं, आप ये कहते हैं कि मैं साल यूज करूंगा जो अब इस गवर्नमेंट ने किया है. मेरे ख्याल से इन्होंने बेस ईयर अपना चेंज किया है, 2005-06 से चेंज करके वो 2015-16 पे लेकर आए हैं. यानी मैं अब जो कीमतें लूंगा मैं वो 2015-16 की कीमतें लूंगा, ठीक है. इससे पहले मैं 2005-06 की कीमतें यूज कर रहा था जो इसहाक डार साहब के दौर में, मिफ्ता इस्माइल के दौर में, जो जीडीपी उन्होंने भी रीबेसिंग मेरे ख्याल से की थी शायद, वो 2005-06 की प्राइसेस में आ गए थे. अब ये गवर्नमेंट कहती है हम 2015-16 की प्राइसेस में आएंगे और इससे बढ़ाकर, यानी इसकी बुनियाद पे हम जज करेंगे कि हमारी पैदावार में कितना इजाफा हो रहा है. यानी कीमतें मैं उस साल की यूज करूंगा लेकिन जो नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, यानी जो क्वांटिटी प्रोड्यूस है, जो अशिया की पैदावार है, वो मैं इस साल की इस्तेमाल करूंगा. सो इससे आपको एक एक्चुअल पिक्चर मिलती है. आप इन्फ्लेशन वाला फैक्टर जो है, यानी कीमतों के बढ़ने वाले फैक्टर को आप साइड पे कर देते हैं. समझ में आया? आई रियली होप आई हैव ट्राइड टू, मैं आसान तरीन अल्फाज में मैंने कोशिश की आपको ये बात समझाने की. जाहिर इसमें बहुत और फर्दर डिस्कशन निकल जाते हैं लेकिन इससे आसान मेरे लिए अल्फाज का इंतखाब ज़ाती तौर से मेरे लिए ज़रा मुश्किल होता. तो हुकूमत ने भी यही किया है. अब हम 2021 में बैठ के 2005 और 2006 की कीमतों पर जो है वो जब चीज़ें हम देख रहे होते हैं. अच्छा, एक और भी बड़ा फर्क आता है. एक और ये फर्क आता है कि 2005 या 6 में मुल्क की जो प्रायोरिटीज थी वो डिफरेंट थी, आपकी चीजों का मिक्स डिफरेंट था. अब जाके 10-15 साल में मुल्क की चीजों का मिक्स जो है वो डिफरेंट हो जाता है. मसलन मैं बड़ा हैरान हुआ ये बात जान के कि पाकिस्तान में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का जो शोबा है उसमें गारमेंट्स आता ही नहीं था. आई वाज सरप्राइज्ड कि वो नहीं आता था. अब उन्होंने जो अब लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कैलकुलेशन पे वो लेकर आ रहे हैं, तो अब उसमें उन्होंने गारमेंट्स को भी डालना शुरू कर दिया, जिसको मैं ख्याल 6% वेटेज दी गई है. सो गारमेंट्स माशाल्लाह जो इस वक्त पाकिस्तान की ग्रो कर रही है. सुबह मैं बीबीसी के आर्टिकल का बता रहा था कि बीबीसी उर्दू जैसे पाकिस्तान से कोई खास मोहब्बत ना रखने वाला जो इदारा है, वो ये बात कर रहा है कि पाकिस्तान ने किस तरह अमरीका की मार्केट में बांग्लादेश और हिंदुस्तान को पीछे छोड़ दिया. सो गारमेंट्स बड़ी तेजी से ग्रो माशाल्लाह कर रहा है. सो यहाँ पे जाके अब पाकिस्तान की वो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की कैलकुलेशन का भी हिस्सा बन जाएगा, जो इससे पहले नहीं था. सो हुआ क्या है, आपने अपनी जीडीपी को रीबेस किया, अब आप प्राइसेस अपनी जो है वो 2005 से 2015 और 16 पर लेकर आए. तो ये बात तो आप मानेंगे कि 2005 से लेकर जब आप 2015 पे आएंगे तो कीमतें तो बढ़ेंगी. तो आपकी जो बेस प्राइस है जो पहले 100 रुपए थी वो बढ़कर 120 हो गई, ठीक है. लेकिन अब वो 120 आपकी बेस प्राइस बन जाएगी, यानी वो 120 अब 100 बन जाएगा, कुछ यही समझ लें आप. तो उसकी वजह से क्या होता है कि सारे के सारे नंबर जो है ना ये बढ़ जाते हैं. जब ये नंबर सारे बढ़ जाते हैं तो फिर आपकी जीडीपी का साइज बढ़ जाता है, उसका हजम जो है, उसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है. सो पाकिस्तान की जीडीपी जो कि पिछले साल यानी जो पिछली कैलकुलेशंस पिछले बेस ईयर के मुताबिक 296 बिलियन थी, वो अब बढ़ के 347 बिलियन हो गई है. एंड आई कैन टेल यू गाइज दिस एक्चुअली रिप्रेजेंट्स अ मोर रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ योर इकोनॉमी. देखिए आपको एक और बात समझनी पड़ेगी, किसी भी मुल्क की मजमूई कौमी पैदावार को कैलकुलेट करना आसान काम नहीं है. मैंने जो एक गाड़ियों वाली मिसाल दी है, ये गाड़ियों वाली मिसाल तो मैंने इससे आसान तरीन बहुत आसान, लेकिन एक इकोनॉमी बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, उसमें सैकड़ों इंडस्ट्रियां होती हैं. और पाकिस्तान जैसे मुल्क में, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हिंदुस्तान, श्रीलंका, जहां पे इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अनडॉक्यूमेंटेड है, जहां पे इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो आपके ब्लैक इकोनॉमी जिसे आप कहते हैं, वहां पे तो मजमूई कौमी पैदावार को कैलकुलेट करना एक इम्पॉसिबल तरीन किस्म का जो है वो काम है. सो अब जो है वो सिलसिला ये हुआ है कि पाकिस्तान की अभी भी ये 347 बिलियन जो पाकिस्तान की नई जीडीपी निकल कर आई है, मैं आपको ये गारंटीड बात बता रहा हूँ, पाकिस्तान की असल जीडीपी इससे कहीं ज्यादा है. बिकॉज जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा तो मैं कैलकुलेट ही नहीं कर पाता हूँ. ये चैलेंज अमरीका, स्विट्जरलैंड, बर्तानिया में नहीं है, बिकॉज वहां पर जीडीपी का, इकोनॉमी का, मईशत का बहुत बड़ा हिस्सा डॉक्यूमेंटेड है. एवरीवन हैज टू पे देयर टैक्सेस, रिपोर्ट देयर इनकम्स एंड स्टाफ एंड ऑल. So, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज का एक बड़ा चैलेंज है और डिलेमा है, ठीक है जी. तो यहां तक इस डिस्कशन को हम फिलहाल जो है ना अभी रोकते हैं, ठीक है, बिकॉज मुझे एक ब्रेक की जाने पड़ना है, और ब्रेक से वापस आके इस डिस्कशन को हम कंटिन्यू करते हैं, इसको हम रैप अप करेंगे. तो अब ये जब हमने बेस ईयर अपना चेंज कर दिया, पाकिस्तान की जीडीपी बढ़ गई, इसके इम्पैक्ट क्या हुए हैं, और थोड़ा सा उसका जो एक इम्पैक्ट होगा वो मैं आपको यही बोलूंगा कि कुछ हमारे कॉम्प्लेक्सेज हैं उससे भी जरा हमें बाहर निकलने का मौका मिलेगा. कैसे बताते हैं आपको थोड़ी देर बाद. Don't go anywhere and keep listening. अच्छा जी, वक्त का मैं मुकाबला सख्त है, बिकॉज मुझे एक स्पॉन्सर्ड ट्रैक भी जो है यहाँ पे चलाना है. मैं आपको मैंने आई थिंक आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट ये बताने के लिए कि जी रीबेसिंग की एक्सरसाइज जो होती है उसका मकसद क्या होता है, और उसका जो है पाकिस्तान को ये क्यों करना पड़ा है. अच्छे मुल्क जो हैं वो जनरली अच्छी जो प्रॉपर इकोनॉमी मैनेज करने वाले ममालिक जो हैं वो हर थोड़े अरसे बाद अपनी इकोनॉमी को रीबेस कर रहे होते हैं. अच्छा, नाउ लेट्स कम टू द इम्पैक्ट दैट दिस हैज हैड ऑन अ नंबर ऑफ थिंग्स. देखिए, जीडीपी आपकी बढ़ गई, इसका मतलब ये कि पर कैपिटा जीडीपी भी जो है हम पाकिस्तानियों की बढ़ के वो अब हो गई है 1748. ओके, इससे पहले ये थी 1543, उससे बढ़ के हो गई है 1748. ओके, इसका मतलब ये दैट पाकिस्तान, अब मैं कॉम्प्लेक्सेस से बाहर निकलने की बात कर रहा था, पाकिस्तान पर कैपिटा जीडीपी इज नाउ हायर देन बांग्लादेश. ओके, पाकिस्तान पर कैपिटा जीडीपी इज नाउ ऑलमोस्ट इक्वल टू दैट ऑफ इंडिया. रीबेसिंग एक्सरसाइज का ये आपको फायदा हुआ है कि एक इकोनॉमी की अब सही बेहतर, मैं परफेक्ट नहीं कह सकता इसको, लेकिन एक बेहतर पिक्चर आपके सामने आ रही है. आपकी जीडीपी पर कैपिटा बांग्लादेश से आगे निकल गई है, और इसके अलावा आप अब इंडिया के ऑलमोस्ट बराबर आ गए हैं पर कैपिटा जीडीपी. अगर किसी ने मुझे ये बोला कि हुकूमत जानबूझ के ये करती है ताकि अपने नंबरों को अच्छा दिखाए, तो प्लीज खुदा के लिए उसको मेरा ये ना लेक्चर सुना दीजिएगा. आप भी सुन लें यार, बोक्सों से बाहर निकलें, मुल्क के बारे में सोचें यार, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है. मैंने आपको इसकी लॉजिक जो है वो बता दी है. नाउ सम नंबर्स हैव आल्सो स्टार्टेड लुकिंग गुड. पाकिस्तान डेट टू जीडीपी रेशियो अब जो है वो नीचे आ गया है. फिस्कल डेफिसिट का नंबर आपका 6.1% पे आ गया है फ्रॉम 7.1%. आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट 0.6% था उससे अब वो 0.5% पे आ गया है. हाउएवर सम नंबर्स में डिटेरियोरेशन हुई है, जिसमें ऑफ कोर्स आपका जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है वो खराब हुआ है. बिकॉज टैक्स तो नहीं बढ़ा ना, टैक्स तो नहीं बढ़ा आपकी, लेकिन जीडीपी की बेस बढ़ गई, यानी अब हुकूमत को और मजीद जो है वो मेहनत करनी है. सो द पिक्चर, आई एम नॉट सेइंग इट्स अ परफेक्ट पिक्चर, बट द पिक्चर इज स्टार्टेड टू लुक मच बेटर नाउ. पाकिस्तान की जो जीडीपी ग्रोथ रेट जो हमने पिछले साल तकरीबन 4% की थी, वो अब बढ़ के 5.57% हो गई है. नून लीग के जो बेस्ट ईयर की परफॉर्मेंस थी वो 5.8% से बढ़कर 6.1% हो गई है इस जीडीपी रीबेसिंग की वजह से. सो या एनीवे गाइस, हाँ बिल्कुल, हमारे इंजीनियर बाबू अब मुझे कह रहे हैं कि अदील भाई गाना भी चलाना है, अब आप अपने भाषण जो है बंद करें इकोनॉमिक्स के. तो मैं आप लोगों से इजाजत लेता हूँ, इस डिस्कशन को हम नेक्स्ट वीक भी कंटिन्यू कर सकते हैं. बट थैंक यू सो मच फॉर ऑल द फीडबैक दैट यू गाइस हैव शेयर्ड. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात जो है वो होगी अब मंडे मॉर्निंग एक बार फिर. विशिंग यू ऑल अ वंडरफुल वंडरफुल वीकेंड अहेड. सो टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज, एंड पाकिस्तान जिंदाबाद.